सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से।
उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, जिसमें आइए सुनते हैं शिक्षा विभाग की प्रोफेसर प्रकृति जेम्स से उनका व्याख्यान।
सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार।
नमस्कार प्रिय प्रशिक्षार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं बीएड मुक्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र समकालीन भारतीय शिक्षा की प्रथम इकाई, जिसका शीर्षक है आधुनिक शिक्षा का विकास। पिछली चर्चा में हमने वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जाना, आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। भारत में बौद्ध कालीन शिक्षा का कालखंड 500 BC से 1200 AD माना जाता है। वैदिक कालखंड में वैदिक धर्म प्रारंभ में अत्यंत सरल था, बाद में गुरुकुल पद्धति और ब्राह्मणों के एकाधिकार के कारण अनेक कर्म कांडों का समावेश हुआ, परिणामस्वरूप वैदिक धर्म जटिल होकर लुप्त होने लगा, जनता वास्तविक धर्म को भूलती चली गई। इस तरह वैदिक कालखंड के अंत में धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगी। इन्हीं समस्याओं एवं विषमताओं के सुधार के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसका प्रभाव तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। बौद्ध धर्म तत्कालीन जनता की भाषा में प्रचारित होने वाला तथा जनसाधारण वाला धर्म था, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार और बौद्ध शिक्षा का विकास हुआ। बौद्ध धर्म की पहचान क्या थी? बौद्ध दर्शन के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनका समय 1200 AD तक माना जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म को बुद्ध धम्म कहते हैं। धर्म और धम्म में मूलभूत अंतर बताया जाता है। धर्म में प्रार्थना है तो धम्म में वंदना होती है। धम्म में देवी देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। धर्म आस्तिकवादी है तो धम्म नास्तिकवादी है। धम्म पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं रखता, यह धर्म के कर्म कांड को भी नहीं मानता। बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? बौद्ध काल में शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी। बौद्ध काल में कर्म कांड एवं यज्ञ विधि का कोई स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म के जो उद्देश्य हैं वे हैं बौद्ध धर्म के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना, सत्य अहिंसा के आधार पर मानव समाज की स्थापना करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास होना, भावी जीवन के लिए तैयारी करना तथा लौकिक एवं दैहिक सुखों का त्याग कर दिव्य मानवता की प्राप्ति करना। बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जो कि हैं सांसारिक जीवन दुखमय है, इन दुखों का कारण तृष्णा है, दुखों का अंत संभव है, दुखों के अंत का उपाय है। इन सत्यों को क्रमशः सर्व दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। दुख को नष्ट करने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताए हैं। अष्टांग मार्ग क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य विश्वास तथा सत्य दृष्टिकोण। दूसरा है सम्यक संकल्प अर्थात सत्य संकल्प अथवा सत्य विचार। तीसरा है सम्यक वाक अर्थात सत्य वचन बोलना। चौथा है सम्यक कर्मांत अथवा सत्य कर्म करना। पांचवा है सम्यक आजीविका अर्थात जीविका का साधन अच्छा होना। छठवा है सम्यक व्यायाम अर्थात सदैव प्रयत्नशील रहना। सातवां है सम्यक स्मृति अर्थात सभी कार्य विवेक पूर्ण करना। आठवां है सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता। अष्टांग मार्ग का अनुसरण करते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे पंचशील कहते हैं। यह पंचशील अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इंद्रिय संयम तथा मादक पदार्थ का सेवन ना करना है। अब हम देखते हैं कि वैदिक बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी? वैदिक कालखंड में गुरुकुल में तथा बौद्ध कालखंड में मठों व विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के द्वारा समान रूप से सभी समुदाय के लिए द्वार खुले थे। बौद्धकालीन शिक्षा में दो प्रमुख संस्कार होते थे, पबज्जा संस्कार तथा उपसंपदा संस्कार। पबज्जा संस्कार क्या है? बौद्ध काल में शिक्षा की शुरुआत पबज्जा संस्कार से होती थी। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार का अभिप्राय था कि बालक अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करता था। मठ के सबसे बड़े भिक्षु के द्वारा यह संस्कार बालक के लिए कराया जाता था। विनय पिटक के अनुसार छात्र सिर के बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करके प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और पालथी मार के बैठकर तीन बार बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कहता था। ऐसा करने के बाद उन्हें श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। बौद्ध मठों में शिक्षा की अवधि 12 वर्ष तक रहने के कारण इनकी शिक्षा 20 वर्ष में पूर्ण हो जाती थी। अगला संस्कार था उपसंपदा। शिक्षा पूर्ण होने के बाद भावी जीवन की व्यवहारिक कुशलता के लिए बौद्ध युग में उपसंपदा संस्कार होता था। यह प्रायः विद्यार्थियों के 20 वर्ष की उम्र में होता था। उपसंपदा संस्कार के समय मठ के सभी बौद्ध भिक्षु एक निश्चित तिथि पर एक स्थान पर एकत्रित होते थे। उपसंपदा के बाद श्रमण भिक्षु हो जाते थे। साधारणतः बौद्ध कालखंड में 20 वर्ष की आयु तक अध्ययन काल होता था। इसमें 8 वर्ष पबज्जा तथा 12 वर्ष उपसंपदा का समय होता था। गौतम बुद्ध ने अपने काल में वर्णाश्रम पद्धति का प्रखर विरोध किया था। यज्ञ के लिए पशुओं की बलि देने का भी उन्होंने विरोध किया था। बौद्धकालीन समय में शिक्षण विधि में व्याख्यान, वाद विवाद, पर्यटन, सूत्र, स्वाध्याय, विश्लेषण आदि प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता था। मुख्यतः रटने पर बल दिया जाता था। बौद्ध युग की मौखिक भाषा पाली थी। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा को ही अपने प्रवचन का माध्यम बनाया था। बौद्ध काल का पाठ्यक्रम कैसा था? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति था, इसलिए बौद्धकालीन शिक्षा में पाठ्यक्रमों में धर्मशास्त्रों का स्थान प्रथम था। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक था। बौद्धकालीन शिक्षा मुख्यतः तीन भागों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा विनय ग्रंथ। प्राथमिक शिक्षा, इसमें बालक बालिकाओं को पढ़ना लिखना, प्रारंभिक व्याकरण, प्रारंभिक गणित तथा धार्मिक आचार की शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक और लौकिक शिक्षा में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विभाजित था। धार्मिक पाठ्यक्रम केवल भिक्षुओं के लिए था। उनको धार्मिक और जीवन प्रयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इसमें बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक, विनय, धम्म आदि मुख्य धार्मिक विषय थे। जीवन उपयोगी विषयों में मठों और विहारों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। लौकिक पाठ्यक्रम साधारण नागरिकों के लिए था। इसके पाठ्यक्रम में धर्मशास्त्र, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि का समावेश था। बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में धार्मिक, दार्शनिक एवं लौकिक विषयों के समन्वय के कारण पाठ्यक्रम सर्वसुलभ, उपयोगी, व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक माना जाता है। विनय ग्रंथ, विनय ग्रंथ का अध्ययन करना यह बौद्धकालीन पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक था। भगवान गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके उपदेशों को गुरु ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया। बौद्ध शिक्षु व विषयक नियम अर्थात विनय, इस विनय के एकत्रीकरण को विनय पिटक ग्रंथ कहते हैं। बौद्धकालीन समय में व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। भिक्षुओं तथा जन साधारण को व्यावसायिक शिक्षा की विभिन्न सुविधाएं प्राप्त थी, जिसमें कि हस्त शिल्पों की शिक्षा, लाभपद व्यवसायों की शिक्षा, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला तथा प्राविधिक व वैज्ञानिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, ये सब दिया जाता था। अब हम देखते हैं कि बौद्धकालीन समय में परीक्षा का जो तरीका था वो क्या था। बौद्ध कालखंड में परीक्षा पद्धति विशेष रूप से प्रचलित नहीं थी। शिक्षा प्रारंभ होने पर या बीच में भी कभी परीक्षा नहीं ली जाती थी, परंतु शुरुआत में कुछ विधियों का उपयोग अवश्य किया जाता था। बौद्ध भिक्षु होने के लिए उपसंपदा विधि होती थी। विहार में आने वाले भिक्षु से नाम, उम्र आदि के संबंध में प्रश्न पूछकर पूर्ण समाधान होने पर ही उसे भिक्षु संघ की सदस्यता दी जाती थी। सीखते समय भिक्षुओं का अवलोकन किया जाता था। नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता था। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रायश्चित करने का प्रावधान था। इस कालखंड में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था। समाज में उनका आदर किया जाता था। वे तत्वज्ञानी, आत्मसंयमी एवं सचरित्र होते थे। आचार्यों और शिष्यों में पिता पुत्र की तरह संबंध थे। शिष्य खुशी से गुरु की सेवा करते थे। भिक्षाटन करना तथा गुरु के कपड़े साफ करना विद्यार्थियों का कर्तव्य था। शिष्य गुरु की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करते थे। गुरु भी अध्ययन के अतिरिक्त उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा के समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र स्थापित किए गए थे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पल्लवी विश्वविद्यालय तथा मिथिला विश्वविद्यालय थे। बौद्धकालीन शिक्षा के समय स्त्री शिक्षा का स्वरूप क्या था। बौद्ध कालखंड में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। गौतम बुद्ध पहले स्त्री को सिद्धि के लिए बाधक समझते थे, इसलिए संघ में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध माना गया। परंतु बाद में अपने प्रिय शिष्य आनंद की प्रार्थना स्वीकार करके स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। भिक्षुणी बनकर वे भी मठ के नियमों एवं अनुशासन का पालन करती थी। आजन्म ब्रह्मचारी रहती थी। इन भिक्षुणियों में से एक शिक्षक होती थी जो उपाध्याय कहलाती थी। वे विदुषी होती थी और सद्मार्ग पर चलकर पवित्र एवं अनुशासित जीवन बिताती थी। इन भिक्षुणियों में संगमित्रा, सुमेधा, शुभा, अनुपमा आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखते हैं बौद्ध शिक्षा के गुण क्या हैं। बौद्ध कालखंड में सुसंगठित शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। शिक्षा का माध्यम जन सामान्य की भाषा पाली था। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया। सार्वत्रिक शिक्षा की सुविधा के कारण शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोले थे। सरकारी नौकरी, डाकू, सजा काटे हुए लोगों को मठ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। शिक्षण में अनुशासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। शिक्षा का माध्यम जन साधारण की भाषा था। सामूहिक शिक्षा पद्धति पर विशेष जोर दिया गया था। स्त्री शिक्षा का विकास हुआ तथा जाति पाति एवं वर्ण व्यवस्था का लोप हुआ। सांस्कृतिक संबंध दृढ़ करने में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख स्थान था। बौद्ध शिक्षा सत्य एवं अहिंसा पर आधारित थी। बौद्ध शिक्षा में यज्ञ और कर्मकांड का निर्देश था। शिक्षा में लौकिक विषयों का समावेश था। समाज में नैतिक मूल्य तथा आचार, समता इत्यादि को महत्व दिया गया था। शिक्षा के शैक्षणिक केंद्र प्रसिद्ध थे। एक प्रकार से ये छात्रों के सर्वांगीण विकास का अहम दौर था। अब हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के अवगुणों पर। धार्मिक शास्त्रों के शिक्षण की प्रधानता के कारण कला कौशल का विकास इस कालखंड में कम हुआ। शिक्षा में अहिंसा तत्व पर बल दिए जाने के कारण सैनिक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा सका। बौद्ध धर्म के पतन के कारण शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ गई। बौद्ध कालखंड में हस्तकार के प्रति घृणा पैदा होने लगी। स्त्री शिक्षा समान स्त्री तक नहीं पहुँच सकी। अन्य धर्मावलंबी शिक्षकों को बौद्ध मठों में प्रवेश निषेध होने के कारण एक संकुचित दृष्टिकोण का विकास हुआ। संसार को क्षणभंगुर एवं मिथ्या कहकर बौद्ध शिक्षा ने पलायनवाद को बढ़ावा दिया। एक प्रकार से इस शिक्षा से भिक्षुओं को अधिक बढ़ावा मिला तथा कृषकों एवं अन्य समाज उपयोगी नागरिकों को अपेक्षाकृत कम बढ़ावा मिला। इसके बावजूद बौद्ध शिक्षा की आधुनिक भारतीय शिक्षा को कई महत्वपूर्ण देन हैं, जैसे कि सामान्य विद्यालय, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, सभी धर्म और जातियों के बालकों के लिए समान शिक्षा का अवसर, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था, लौकिक और सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था, व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा की व्यवस्था, उच्च स्तर पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा के विभिन्न स्तरों का विकास, खेलकूद एवं शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यात्म की निश्चित अवधि की व्यवस्था। इस प्रकार हमने बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा पूर्ण की। इस चर्चा के बाद आपने बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता, उद्देश्य, शिक्षा प्रणाली, इसके गुण तथा दोष के बारे में तथा इसकी देन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली चर्चा में हम मध्ययुगीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे।
पंडित सुंदर लाल यशस्वी है आदर्श हमारे, स्वतंत्रता भ्रातृत्व भाव का हो प्रकाश भिन सारे, स्वाध्याय परम तप ध्येय है जीवन का अभिमंत्रण, सदाचार सत्य से मत डिगो प्रेरित अपना जी।